इज अ नॉलेज, नॉलेज नॉलेज होती है, इट्स नॉट बीइंग द डिविजन ऑफ रिलीजियस एंड सेक्युलर, मगर आपको अब मैंने एक फाउंडेशन पर खड़ा कर दिया है, तो आपको मेरी बात इंशाल्लाह आगे समझ आएगी। इस रमजान में हमने इसी कॉन्सेप्ट के साथ कोशिश करनी है कि आप अपने बच्चों को भी ये बात सिखाएं, खुद भी सीखें कि आपने अल्लाह की इबादत 24/7 करनी है, पार्शियल नहीं करनी। अल्लाह ने मुझे मुस्लिम बनाया है, इट्स अ पैकेज डील, जो हुक्म आएगा लेना होगा, जो बात कही जाएगी सुननी होगी, जिस तरह कही जाएगी उस तरह सुननी होगी, अपनी मर्जी के साथ नहीं सुननी होगी। तो अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इस रमजान के महीने में हमारे ईमान को जिंदा करे, अल्लाह हमें अपना खौफ भी दे, खौफ भी चाहिए, और अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत भी दे। अल्लाह का खौफ, बाज़ स्कॉलर्स अपनी किताबों में लिखते हैं कि अल्लाह का खौफ मांगना चाहिए। हम कहते हैं कि नहीं नहीं, अल्लाह से सिर्फ मोहब्बत करनी चाहिए, इसलिए कि अल्लाह सिर्फ अलगफूर अलरहीम है। अल्लाह सिर्फ अलगफूर अलरहीम नहीं है, अल्लाह अलजब्बार भी है, अल्लाह अलकहार भी है, अल्लाह जो है वो अलहसीब भी है, अल्लाह शदीदुल इकाब भी है, सजा देने में बहुत सख्त भी है। सो वी नीड अ बैलेंस। हाँ, जो स्कॉलर्स कहते हैं कि इंसान को अपने अंदर अल्लाह का खौफ रखना चाहिए, वो इसकी बहुत खूबसूरत एनालॉजी देते हैं। वो कहते हैं आप दुनिया में जिस चीज से डरते हैं वो चीज जहन में लाइए, और एक तरफ आप अल्लाह के खौफ को जहन में लाइए, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। आपका जिसमें जिस चीज से आप दुनिया में डरते हैं आप उससे दूर भागते हैं, और जो अल्लाह से डरते हैं फिर्रू इलल्लाह, जो अल्लाह से डरता है वो अल्लाह के और करीब जाता है। अल्लाह से डरने वाला दुनियावी डेफिनेशन में डर की तरह अपने डर को नहीं लेता। आप दुनिया में सांप से डरेंगी तो आप सांप के और करीब करीब जाएंगी, हाँ प्यारे सांप मुझे तुमसे बहुत डर लग रहा है, ऐसे तो नहीं करते ना, हम दूर भागते हैं उससे। लेकिन जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वो अल्लाह के कुर्ब को मैक्सिमम अपनाने की कोशिश करता है। सो अल्लाह से अल्लाह का खौफ मांगिए, और अल्लाह से कहिए कि अल्लाह ताला मुझे अपने रास्ते पर नेकियों में दौड़ने वाला बना दे। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जितने चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं मोर और लेस माशाल्लाह, आप सब लोग यकीनन कुरान की क्लास में पहली मरतबा नहीं आए, सिवाय चंद बच्चों के, जो बच्चे बेचारे मुझे ऐसे देख रहे हैं ये आंटी कितना बोलती है, सिवाय चंद बच्चों के बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सब चेहरे वो हैं जो अक्सर कहीं ना कहीं नजर आते हैं। आपने पहले भी कुरान सुना है, कुरान के बेसिक अहकाम हम सब जानते हैं। हम सब खवातीन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बैठी, अल्लाह ताला ने झूठ मना किया, गीबत मना की, सूद मना किया, अल्लाह ताला ने मना किया कि एक दूसरे का हक मत मारो, अल्लाह ने मुझे और आपको बेहतरीन इखलाक अपनाने की दावत दी, अल्लाह ने कहा दूसरों की गलतियों को छुपाओ, क्या होगा कयामत के दिन मैं तुम्हारी गलतियों को छुपाऊंगा। ये बातें हम सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी आपको शायद इन 18 दिनों में कोई नई बात नहीं बताने वाली, आप लोगों को बहुत सी बातें पहले से मालूम है, फिर भी हम क्यों अपनी नींद को छोड़ के, कम्फर्टेबल कमरों को छोड़कर, कम्फर्टेबल बेड को छोड़कर, घर के आराम और सुकून को छोड़कर बाहर आए हैं सिर्फ रिमाइंडर लेने के लिए। हम सुनते हैं, हम क्लासेस में जाते हैं, हम इल्म हासिल करते हैं, लेकिन फिर भी हम में से हर कोई अपने आप को देखे, आप मुझे जज ना करें मैं आपको जज ना करूं, क्या फिर भी जितना इल्म होता है उतना अमल होता है? नहीं होता ना। क्या लगती है वजह? अगर मैं अपने अंदर देखूं झांक के और मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपने सामने रखूं तो मुझे इस वक्त ओवरऑल एक ही मसला नजर आता है, और वो ओवरऑल एक मसला है दुनिया की मोहब्बत। आप लोग भी अपने अपने बारे में सोचिएगा, आप और मैं जितना इल्म रखते हैं उसी स्पीड में उसी प्रोपोर्शन में अमल नहीं करते, एक ही वजह दुनिया की मोहब्बत। और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोफेसी है कि आने वाले वक्त में टुवर्ड्स एंड ऑफ टाइम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 ईयर्स पहले कहा था कि तुम्हारे बाद, सहाबा से कहा था तुम्हारे बाद मुसलमान कसीर तादाद में होंगे लेकिन समुन्दर की झाग की तरह होंगे, और तुम लोग जो हो तुम्हारे ऊपर तुम्हारे दुश्मन जो है वो बिल्कुल ऐसे फीस्ट करेंगे जैसे कि भूखा इंसान जो है वो खाने पर फीस्ट करता है। तो जब साहबा ने पूछा क्या हमारी तादाद कम होगी, आपने कहा नहीं तादाद कम नहीं होगी, तुमको वाहन की बीमारी हो जाएगी, हुब्बुद दुनिया वकराहियतुल मौत। और आप और मैं इस वक्त इल्म के बावजूद जो अमल में आगे नहीं दौड़ रहे या जो स्टैग्नेशन आई हुई है उसकी एक ही वजह है हुब्बुद दुनिया। जो हुब्बु दुनिया का शिकार होता है उसको अपने आप से मोहब्बत हो जाती है, वो सेल्फ ऑब्सेशन का शिकार हो जाता है। सेल्फी कल्चर कहाँ से आया? हुब्बु दुनिया, अपनी ही जात का दीवाना बना फिरता हूँ, सेल्फी कल्चर। अब जब आपका बच्चा सेल्फी ले, वैसे तो हम आंटियां भी सेल्फी खूब लेती हैं। हाँ, जब आप अब यहाँ जितनी बच्चियां बैठी हैं, जब अम्मा सेल्फी लें तो आप भी जुमला बोलें, और जब बेटियां और बेटे सेल्फी लें तो भी आप जुमला बोल दिया करें, अपनी ही जात का दीवाना बना फिरता हूँ। और सेल्फी कल्चर बिल्कुल इसकी अलामत। ये दुनिया की मोहब्बत निकलती कैसे? अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको तरीका बताऊं दुनिया की मोहब्बत निकालने का, एक वाकया, वल्लाहु आलम उसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन बहरहाल उसको तफसील में मेंशन किया गया है। ये आपको जोइश ट्रेडिशन में मिलता है, जिसको इसराइलियात कहा जाता है। और इतना बेसिक समझ लीजिए कि आप जोइश हिस्ट्री में से उस वाक्य को ले सकते हैं जिसको ना इस्लाम जो है रिजेक्ट कर रहा हो, ना ही उसके सच्चा होने के लिए कोई दलील आपको इस्लाम में मिले। उस पार्ट को जोइश ट्रेडिशन में से लिया जा सकता है। इसी वजह से मुफस्सरीन ने इस वाक्य को दुनिया की मोहब्बत का इम्पैक्ट दिखाने के लिए, लोगों को, मुसलमानों को सबक देने के लिए अपनी तफसील में मेंशन किया है। वाक्य ऐसे आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम का वाक्य है। ईसा अलैहिस्सलाम, और मैं इसको जोइश ट्रेडिशन क्यों कह रही हूँ, बिकॉज ये सारे का सारा लाइन तो एक ही थी। आपको ये जितनी भी हिस्ट्री कंपाइल होती हुई मिलती, बिकॉज ट्रेडिशन पढ़ने लिखने का ज्यूज में ज्यादा था, ज्यूज लिखा पढ़ा ज्यादा करते थे, इसलिए आपको उनके टाइम में जितने भी प्रॉफिट्स आए आपको उनकी हिस्ट्री काफी ज्यादा रिकॉर्डेड मिलती है। और ऑब्वियसली बाद में ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसीफाई कराने में भी वो जो वहां लोग थे वो सारे आसपास जितना भी हिस्ट्री लिखने वाला क्राउड था वो मेजॉरिटी ज्यूज ही थे। तो ईसा अलैहिस्सलाम का एक वाकया वो मेंशन करते हैं। वो कहते हैं कि एक मरतबा ईसा अलैहिस्सलाम अपने कुछ साथियों के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ एक सफर पर जा रहे थे। उनका कोई सफर था जिसमें वो एक दूसरे अपने फॉलोअर्स को तालीम भी दे रहे थे और उन्हें कहीं दूर ट्रैवल करके जाना था। तो ईसा अलैहिस्सलाम जब एक मुकाम पर पहुंचे तो उनके साथियों ने उनको बताया कि हमारे पास खाना खत्म हो गया है। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कोई मसला नहीं है, हम यहीं कैंप लगाते हैं जहां पर वो उस वक्त थे, और जिसके पास जितना अमाउंट है, जो थोड़ा बहुत है वो दे दे एक इंसान को, एक बंदे को, और एक जाकर नियरेस्ट बाजार से कोई खाने पीने की चीज लेकर आ जाए। ईसा अलैहिस्सलाम ने एक बंदे को अपॉइंट किया, सारे पैसे जमा हुए, और उन्होंने उस अपने एक साथी से कहा कि आप जाएं और नियरेस्ट शहर से जो खाना मिलता है ले आए, जो हम सब खा लेंगे। वो बंदा गया। अब क्योंकि सफर हो और सफर के बाद आप बहुत ज्यादा थक गए हो और आपने काफी देर से कुछ ना खाया हो तो भूख कैसे लगती है? अभी भी आप सफर पे आए हुए हैं ना, अपने घर से यहाँ सफर करके आए और फिर रोजा भी है, तो जब इफ्तारी होगी तो भूख कैसी लगेगी? जानदार। अच्छा, मैं आपको मिसाल बताऊं, रमजान ना भी हो, अगर मैं कहीं क्लास के लिए जाती हूँ तो मैं क्लास से पहले, जस्ट पहले कुछ नहीं खा पाती हूँ, लेकिन जब मैं वापस जाती हूँ ऐसा लगता है मैं 6 दिन की भूखी हूँ। मुझे नहीं पता आप में से जो बाकी लोग क्लास लेते हैं उनको ऐसा लगता है या नहीं लगता, मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि इतनी भूख लगती है। सो ये जो सब लोग थे ईसा अलैहिस्सलाम के साथ, इनको भी बहुत भूख लग रही थी। अब जो गया था तो ईसा अलैहिस्सलाम का फॉलोअर था, तो उस इंसान भूख तो उसको भी लग रही थी। सो जब वो बाजार गया तो उसको 3 ब्रेड लोफ्स मिले, बड़े बड़े 3 ब्रेड लोफ्स मिले। अब जब तक उस वापस आता, कभी कभी होता है ना आप बच्चों को रोटी लेने के लिए भेजें तो तोड़ते हुए लेकर आते हैं बीच में से, तो वापस पहुंचते खरीदने से लेकर अपने साथियों तक ये बंदा पूरा 1 ब्रेड लोफ खा गया। टोटल 3 थे, अब 2 रह गए। अभी वापस आया, ईसा अलैहिस्सलाम के पास जब आया, अच्छा, और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत से मिरेकल्स में से ये मिरेकल भी दिया था कि वो पहचान जाते थे कि किसने क्या खाया हुआ है। आपके कई मौजज़ों में से एक मौजज़ा ये भी आता है। ईसा अलैहिस्सलाम के पास जब ये बंदा लाया 2 लोफ्स तो इसने पकड़ाए, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा तीसरा कहाँ है? उसने कहा नहीं, 2 ही आए थे। जब आप झूठ बोलते हैं तो फिर आप ऐसे ही आयन बाएं शायन करते हैं। उसने कहा नहीं नहीं, बस 2 ही आए इस सारे पैसों में। ईसा अलैहिस्सलाम ने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया, उन्होंने वो 2 लोफ्स लिए और अपने साथियों के साथ बैठे और सबने मिलकर खा लिया। सफर कंटिन्यू हो गया। आगे गए थोड़ी देर के बाद, तो अब सफर लंबा हुआ, थकन हुई, फिर किसी जगह जाकर पड़ा डाला। अब सोचा अब क्या खाएं, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हिरन का शिकार इस इलाके में किया जा सकता है, हिरन का शिकार करते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और उनके साथियों ने हिरन शिकार कर लिया, उसको उन्होंने ज़िबह किया, उसको बारबेक्यू किया और उसका खाना खाया। पूरा उन्होंने हिरन अच्छी तरह मजे से पेट भर के खा लिया। जब हिरन खा लिया तो उसके बाद उसकी हड्डियां वहीं साइड पे पड़ी हुई थी, ऑब्वियसली उसका सर वगैरह भी पड़ा हुआ था। सो मुफस्सरीन लिखते हैं कि ईसा अलैहि सलाम ने बुलंद आवाज में अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह इस हिरण में जिंदगी दे दे। और आपको मालूम है कि ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने खास मिरेकल दिया था कि वो मुर्दा को जिंदा कर दिया करते थे। अल्लाह के इज़्ज़त से अल्लाह ताला ने ईसा अलैहि सलाम की दुआ कबूल की, उनके साथियों के सामने उस हिरण को जिंदगी मिली, वो जिंदा हो गया, उस पर गोश्त आ गया हड्डियों के ऊपर, वो पूरा सही सलामत जिंदा हिरण बन गया और भागता हुआ वापस जंगल में चला गया। ईसा अलैहि सलाम उसके बाद अपना सफर फिर कंटिन्यू करने के लिए उड़ गए। जो ये ब्रेड लोफ्स लेकर आया था शख्स, इसके पास आए, सबके सामने नहीं कहा, उसके पास आए और उससे कहा, तीसरा ब्रेड लोफ किसने खाया? तो उसने कहा, वल्लाही दो ही थे। ईसा अलैहि सलाम ने फिर कोई बहस नहीं की और फिर आगे चल पड़े। आगे सफर शुरू हुआ तो अब आगे दरिया क्रॉस करना था। अब जब दरिया क्रॉस करना था, कश्ती कोई नहीं थी, तो ईसा अलैहि सलाम ने अल्लाह से दुआ की। और रिवायात में ये बात आती है, वल्लाहु आलम, कि अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और ईसा अलैहि सलाम को कुछ इंस्ट्रक्शंस दी। ईसा अलैहि सलाम ने अपने साथियों को इंस्ट्रक्शन दी कि सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लें और पानी हमारे लिए सरफेस बन जाएगा, हम इसके ऊपर चल कर चले जाएंगे और रिवर क्रॉस कर लेंगे। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। तो ये सारे साथी मौजज़ाना तौर पर पानी के ऊपर, सरफेस के ऊपर बिल्कुल स्टेप रखते हुए सड़क की तरह चलकर दूसरी तरफ क्रॉस करके चले गए। साथी आगे बढ़ गए। ईसा अलैहि सलाम इस शख्स के पास दोबारा आए कि उस रब्बुल इज्जत की कसम है कि बताओ तीसरा लोफ किसने खाया था? वो जिसने हिरन को जिंदा किया, मैं तुम्हें उसका हवाला देता हूँ। वो जिसने समंदर पर रास्ता बना दिया, ये बताओ तीसरा लोफ किसने खाया था? उसने कहा, वल्लाही दो ही थे। इंसान देखे, एक छोटा रोटी का टुकड़ा ही था ना, बोलता था मैंने खाया था, गलती हो गई थी, बहुत से बहुत। ईसा अलैहि सलाम क्या करते? तो बहरहाल मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ये इंसान की भविष्य होती है बाजों का, कि बस मैं आगे से आगे बढ़ूं और बस बदनाम ना हूं और गलतियां भी करता रहूं। तो ईसा अलैहि सलाम ने उस वक्त भी उस शख्स को कुछ नहीं कहा। सफर कंटिन्यू हुआ, उसके बाद एक जगह पर पड़ाव डाला गया। ईसा अलैहि सलाम ने बैठे बैठे मट्टी इकट्ठी की और तीन पाइल्स बना लिए मट्टी के, तुराब, डस्ट के अल्फाज आते हैं तुराब के। आपने तीन पाइल्स बनाए, अल्लाह से दुआ की, अल्लाह इन तीन मट्टी के पाइल्स को गोल्ड का बना दे। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के इज़्ज़त से वो तीनों पाइल्स गोल्ड के बन गए। ईसा अलैहि सलाम ने उस शख्स को बुलाया, उससे कहा, देखो एक पाइल तुम्हारा है, एक मेरा है और एक उसका है जिसने वो तीसरा ब्रेड लोफ खाया। क्या कहा उसने? फौरन कहा, वो तो मैंने खाया था। ईसा अलैहि सलाम ने कहा, ठीक है तीनों पाइल्स तुम्हारे। कोई नहीं डांटा, कुछ नहीं कहा, सबर के साथ बर्दाश्त कर गए, रसूल है ना अल्लाह के। और उसके बाद उससे ये कहा, ये तीनों पाइल्स तुम्हारे, तुम्हारा दुनियावी माल तुम्हें मुबारक हो, और अब तुम्हारा और हमारा सफर आगे कंटिन्यू नहीं होगा, अपने साथियों को लेकर आगे अपने सफर पर चलेगा। ये शख्स यहाँ बैठा था, बहुत खुश हो रहा था कि ब्रेड खा भी ली, रसूल से डांट भी नहीं पड़ी, बता भी दिया और गोल्ड के तीन पाइल्स भी मिल गए। अभी बैठा हुआ प्लान ही कर रहा था कि मैं अपने सोने से क्या करूंगा, कि वहां पर तीन चोर आ गए। और वो तीन चोरों ने देखा कि एक अकेला शख्स बैठा है और उसके पास इतने बड़े बड़े गोल्ड के पाइल्स हैं। उन तीनों ने इसके ऊपर हमला किया और इसको मर्डर कर दिया देयर एंड देन। अब फिर वो भी सफर करके कहीं से आ रहे थे, उनको भूख लगी, तो उन्होंने अपने में से एक से कहा कि जाओ तुम बाजार से खाना लाओ, हम इस माल की हिफाजत करते हैं। वो जो माल लेने गया, दिल और दुनिया की मोहब्बत देखें आप, वो जो माल लेने गया उसने कहा, तीन पाइल्स हैं गोल्ड के, मैं खाना यहाँ खा लेता हूँ, इन दोनों के खाने में पॉइजन मिला देता हूँ, जाऊंगा तो ये दोनों खाना खाएंगे, मुझे मारना भी नहीं पड़ेगा, खुद ही मर जाएंगे। उसने खाने में पॉइजन मिलाया और अपने दोस्तों के पास लेकर आ रहा था। उन दोस्तों ने पीछे प्लान किया कि तीन पाइल्स को हम तीन में क्यों डिस्ट्रीब्यूट करें, दुनिया की मोहब्बत, हम दो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, जैसे आएगा हम इसको मर्डर कर देंगे। चोर दो ऑलरेडी थे, तो जैसे ही वो खुशी खुशी खाना लेकर सामने से आया, इन दोनों ने अटैक किया और उसको कत्ल कर दिया। और अब क्या किया, मजे से रिलैक्स होकर खाना खाने बैठ गए। और फिर क्या हुआ कि उन तीन पाइल्स के पास, उन दुनियावी तीन पाइल्स की दौलत के पास चार लाशें पड़ी हुई थी। ईसा अलैहि सलाम कुछ अरसे के बाद अपने साथियों के साथ वापस पलटे, वो दुनिया का माल, वो गोल्ड पाइल्स अनटच्ड वहीं रखे थे, और चार लाशें वहां मौजूद थी, एक उनके अपने साथी की जिसको वो छोड़ के गए थे और तीन इन चोरों की। ईसा अलैहि सलाम ने अपने साथियों को दुनिया की हकीकत बताते हुए कहा, हादा हयातुद दुनिया, ये है दुनिया की हकीकत। दुनिया की मोहब्बत के पीछे भागेंगे, याद रखें जो जितना दुनिया के माल के पीछे भागता है दुनिया उतना अपने पीछे उसको भगाती है। दुनिया में इंसान अकेले रह जाते हैं जब वो माल के पीछे अपनी जानों को खपा देता है। आप अल्लाह के पीछे लग जाएं, अल्लाह आपके कदमों में दौलत ऐसे लेकर आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि अल्लाह आपको कैसे दे रहा है और कहाँ से दे रहा है। सो ये माल की मोहब्बत है जो क्लासेस के बावजूद, या दुनिया की मोहब्बत है, और दुनिया की मोहब्बत में तो बहुत कुछ आ जाता है, माल की मोहब्बत में सिर्फ माल आता है। दुनिया की मोहब्बत में हमारे रिश्ते, हमारी औलाद, हमारी ख्वाहिशात, हमारे घर, हमारा सजना संवरना, बाउंड्रीज को क्रॉस करते हुए ये सब आ जाता है। ये इसलिए हमसे होता है कि हम इल्म के बावजूद अमल क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हम दुनिया की मोहब्बत में इन्वॉल्व हैं। और कुरान कहता है वह तो है बून अल माला हुबन जमा, तुम इंसान इंसान कैसी मोहब्बत करते हो माल से, बाउंडलेस मोहब्बत करते हो। सो इंशाल्लाह हम अल्लाह से दुआ करें और अल्लाह से मांगा करें, अल्लाह मेरे दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल दे। ये दुआ मांगने की है। दिल से दुनिया की मोहब्बत का निकल जाने का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया में जो जिम्मेदारियां हैं उसको अदा नहीं करेंगी। आपका अच्छा लगना दुनिया की मोहब्बत के साथ एसोसिएटेड नहीं है। आप अच्छी भी लग सकती हैं और आपके दिल में दुनिया की ना मोहब्बत हो, ये भी पॉसिबल है। जो कुछ आपका शरीयत के दायरे में हो जाएगा वो आपको इंशाल्लाह एक स्ट्रीमलाइन सही दुरुस्त रास्ते के ऊपर लेकर आएगा। सो अल्लाह से दुआ मांगा करें कि अल्लाह मेरे दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल दे। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह अन्ह, जिनको अल्लाह ताला ने सहाबी रसूल, जिनको अल्लाह ताला ने खास फहम अता किया था कुरान की आयात को इलाबोरेट करने का, जिस तरह बिल्कुल अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्ह को किया था, वो कहा करते थे कि अगर अपने दिल से दुनिया की मोहब्बत निकालनी है तो उसका तरीका क्या है, तक्वा हासिल करो। और तक्वा कैसे हासिल होता है, अल इल्मु लित्तक्वा, इल्म तक्वा के लिए हासिल किया जाता है। अगर इल्म हासिल करोगे तो तक्वा आएगा, और जब तक्वा आता है, इल्म आता है, तो इंसान फिर अमल में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, और फिर वक्त के साथ साथ ही दुनिया की मोहब्बत इंशाल्लाह दिल से निकल जाती है। ये जो आप जितना भी इल्म हासिल करें उसके लिए दुआ किया करें। अल्लाह के रसूल ने दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़ियन, अल्लाह हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं गैदर करनी, हमें नाफे इल्म, बेनिफिशियल इल्म अता फरमा, वो जो मुझे और आपको एक अच्छा इंसान बनाने में फायदा दे, वो जो मेरी पर्सनैलिटी को एक प्लेजेंट पर्सनैलिटी बना दे। लोग आपके नाम को बाद में याद करें, आपके चेहरे से लोगों के जहन में अच्छा वो जो हर वक्त मुस्कुराती रहती हैं, या जितने लोग हैं जिनके चेहरे पे फौरन मुस्कुराहट आ गई, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको लोग ऐसे ही जानते होंगे। ये होना चाहिए, हर वक्त सीरियस रहना और हर वक्त अपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या ख्याल है। सहाबा कहते थे हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा किसी को मुस्कुराते हुए नहीं देखा। आप कहें हाँ तो ठीक है, वो अल्लाह के रसूल थे, हमारी जिंदगी में तो मुश्किलात इतनी है। डू यू हैव एनी कंपैरिजन विद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन टर्म्स ऑफ मुश्किलात, कितनी मुश्किलात थी उनकी। सो अपनी पर्सनैलिटी को भी प्लेजेंट पर्सनैलिटी बनाइए, दिस इज पार्ट ऑफ बेनिफिशियल इल्म। अपने आप को मैक्सिमम फायदेमंद बनाने के लिए आपने इंशाल्लाह ये काम करना है। जो सेल्फ स्कॉलर्स थे, जो अर्ली स्कॉलर्स थे, वो कहते थे इल्म के लिए आपको क्या करना होता है, दुनिया की मोहब्बत कम करने के लिए क्या करना होता है, एक इल्म हासिल कीजिए, दूसरा उसको एब्जॉर्ब कीजिए या उसको डाइजेस्ट कीजिए, तीसरा उसको अपने दिमाग में प्रोसेस कीजिए कि मैं कैसे इसको फौरन अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का हिस्सा बना लूं, और चौथा वो इल्म आपकी जिंदगी में आखिरी सांस तक अमल बनके शामिल रहे, पर्सनलाइज कीजिए। सो डाइजेस्ट कीजिए इल्म को, सबसे पहले लेवल को क्या है, जो अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ आके बैठ गए, टू सीक नॉलेज, इल्म हासिल करना इज द फर्स्ट स्टेप, इल्म डाइजेस्ट या एब्जॉर्ब करना इज द सेकेंड स्टेप, इल्म को प्रोसेस करना कि मैं किस तरह से अपनी जिंदगी में इस इल्म को अपना हिस्सा बना सकती हूँ इज द थर्ड स्टेप, और फोर्थ स्टेप इज टू पर्सनलाइज इट इस तरह से कि ये अमल मेरी जिंदगी में मेरी मौत तक मेरे साथ साथ चले। यही चीजें, यही तरीके हमें हमारे स्कॉलर्स जो हैं वो सिखा कर गए हैं और हमारे पास ये सब मौजूद हैं। अल्लाह हमारे इल्म को, हमारे ब्लड में मिक्स कर रहे हैं। इसकी अशद जरूरत है। अक्सर अवकात हम सब इस बात पर रिग्रेट करते हैं कि जब हम ब्लंडर कर देते हैं तो 20 मिनट के बाद और आधे घंटे के बाद या एक दिन के बाद ख्याल आता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आता है ना, ये जो अंदर से ख्याल आता है ये आपके अंदर का खैर है जो बाहर आ रहा है। इस खैर को अपनी जिंदगी के ऊपर फैलाने की पूरी कोशिश कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो चीजों के साथ भेजा गया था। सूरह तौबा की आयत नंबर 33 में आता है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक्क। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया है हुदा के साथ, और हुदा स्कॉलर्स कहते हैं यही बेनिफिशियल नॉलेज है जिसको आप नाफे इल्म कहते हैं। इल्म हासिल करना इज द फर्स्ट स्टेप। आप में से हर इंसान के अंदर सिफात और खूबियों का खजाना मौजूद है, हर एक के अंदर। आप में से कोई भी इस वक्त जो है वो यूजलेस नहीं। अगर किसी को ये कभी ख्याल आए मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती दीन के लिए, कभी इस ख्याल को मत आने दें। याद रखें, शैतान का सबसे बड़ा हथियार मोमिन को डिप्रेस करना, ताकि वो मोमिन आगे नेकियों में अपने आप को एनर्जेटिक महसूस ना करे। आप में से हर एक के अंदर अल्लाह ने कोई सिफात के खजाने रखे हैं, और एक सिफत डोमिनेटिंग है, उसको आपने ट्रिगर करना है। वो कौन सी सिफत है? इल्म हासिल करना उस सिफत को ट्रिगर कर देता है। इल्म हासिल करना आपके अंदर के पोटेंशियल को जगा देता है। सो अपने आसपास के इलाकों में भी लोगों को जरूर इनकरेज करें। और ये मैंने कई मरतबा देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। इस मरतबा तो हम रमजान के बाद कोई प्रोग्राम नहीं शुरू कर रहे, मगर मैंने रमजान की बरकत देखी है कि आप रमजानों के बाद जब कोई कोर्स शुरू करते हैं तो आपके पास नए चेहरे एडमिशन लेने के लिए आते हैं। ये रमजान की बरकत होती है। आपके घर, आपके खानदान, आपकी औलाद, आपके आसपास का माहौल, सबको इनकरेज कीजिए। जिसके घर के करीब जो क्लास हो रही है जाइए। कुरान का मिजाज सुनने वाला है। बात को कहते हैं हम पढ़ लेते हैं, हमने खुद तफसीर पढ़ ली। आप ये सारी बातें जो मैं आपको बता रही हूँ आपको मैं इन किताब के अंदर लिखी भी दे देती और आप पढ़ती और मैं ना बताती, कभी आपके ऊपर वो इम्पैक्ट ना आता जो शायद इस वक्त आपके ऊपर अल्लाह की रहमत से आ रहा होगा। कुरान इज एन ऑडियो एक्सपीरियंस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई स्क्रोल नहीं आया था लिखा हुआ, कोई रिटन बुक नहीं आई थी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम सुनाते थे, आपके दिल पर नाजिल करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे। कुरान लिखकर सहाबा को हैंड ओवर नहीं किया गया, आपका कम्प्लीटली ऑडियो एक्सपीरियंस था। आप सहाबा को सुनाया करते थे। सो जितना आप सुनेंगी इंशाल्लाह उससे आपके लिए जो है वो जिंदगी में आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। अल्लाह से दुआ करें। इस वक्त मुसलमान इस प्लैनेट के ऊपर 1.7 बिलियन मौजूद हैं। अल्लाह हम सब मुसलमानों को बीगन ऑफ लाइट बना दे, बाकी इंसानों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए। अल्लाह इस रमजान की बरकत से हम सोए हुए मुसलमानों को जगा दे। और 1.7 बिलियन को भी क्यों बोलना, अगर मैं 1.7 में से 7 और पॉइंट हटा दूं तो क्या रह जाएगा? 1.7 में से 7 और पॉइंट हटा दें, डेसिमल हटा दें तो क्या रह जाएगा? बस आप अपने लिए सोचें, मैं अकेली काफी हूँ, मेरी जिम्मेदारी है। वजअलनाकुम उम्मतन वसतन, अल्लाह ने तुमको उम्मत वसत बनाया है। आप इस तुम की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने कंधों पर महसूस कीजिए। मैं बीकन ऑफ लाइट बनूंगी और अपने अपने खानदानों के अंदर एक टिमटिमाता हुआ चिराग बनिए। डीप डार्क पिच अंधेरे में एक छोटा सा टिनी टाइनी सा आप कैंडल जला दें या दिया जला दें, रोशनी करता है। एक छोटा सा जो खुद भी बेचारा फ्लिकर कर रहा होता है बिल्कुल यूं यूं करके, लेकिन वो कांपता हुआ फ्लेम भी औरों को फायदा देने का बायस बन जाता है। बन जाइए वो फ्लेम इस वक्त। इस वक्त इस्लाम को बहुत ज्यादा प्रैक्टिसिंग मुसलमानों की जरूरत है। इस वक्त इस्लाम को और खासतौर पर हमारे आने वाली यूथ को, हमारे बच्चों को मजबूत ईमान वाले वालिदैन की जरूरत है, इस्तेकामत वाले वालिदैन की जरूरत है। इसलिए कि अगली नस्ल, वो नस्ल जो आपकी और मेरी गोदों में है, वो इस्लाम के बारे में ऑलरेडी बहुत डाउट्स का शिकार हो चुकी है। उसको इस्लाम की खूबसूरती दिखाने वाला कौन है माँ बाप के अलावा? आपकी जात से इस्लाम की खूबसूरती उसको नजर आए। और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे इस माशरे में, इस दुनिया में एजेंट ऑफ रिकंसिलिएशन बना दे। बहुत जरूरत है मुसलमानों को आपस में रिकनसाइल कराने की। झगड़ों को उखाड़ने वाला मत बनिए, झगड़ों को दबाने वाला बनिए। किसी की बुराई आपके सामने आए, अपनी जुबान को जिप कर लीजिए। किसी की बुराई आपको नजर आए, अपनी जुबान को जिप कर लीजिए। अंटिल अनलेस के आप डायरेक्ट उस इंसान को उसकी बुराई बताकर उसकी इस्लाह कर सकते हैं। दो स्कॉलर्स आपस में लड़े, लड़ सकते हैं दो स्कॉलर्स आपस में? नहीं, ये बताएं लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते? इंसान है, रसूल थोड़ी है, इंसान है, लड़ सकते हैं। दो स्कॉलर्स आपस में लड़े, अब ये आपकी और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप चैट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। किसी एक स्कॉलर से गलती हो जाए, गुनाह हो जाए, अब आप और मैं उस पोजीशन पर ना हो कि हम उसकी गलती को पूरी दुनिया में फ्लॉन्ट करते रहे। लोगों की गलतियों को छुपाने वाले बन जाइए। स्कॉलर्स भी इंसान होते हैं, उनसे गलतियां और गुनाह हो सकते हैं, माफ करना, रिकनसाइल करना सीखें। अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह मुझे एजेंट ऑफ रिकनसिलिएशन बना दे। मैं दुनिया में, मैं लोगों में, मैं खानदान में, मैं उम्मत में दिलों को जोड़ने वाली बन जाऊं, दिलों को फाड़ने वाली ना बनूं। लोग आपसे आके, हम औरतें हैं ना, हम औरतों के सामने होम पॉलिटिक्स नहीं आएगी तो किसके सामने आती है? एक कोई कजन दूसरी कजन की बुराई आपसे करती है, आपको रिकनसिलिएशन का मौका यहां मिलता है? सिंपल वे, आप जिस कजन की बुराई सुन रही हैं उसको जाकर मत बताएं, वो जो वो वाली कजन थी ना, वो मुझसे तुम्हारी बुराई कर रही थी। इतना तो कर सकते हैं, यहां से शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मत के लेवल पर मुसलमानों को ताकत दे सकेंगे। यहां से शुरू करेंगे तो सॉफ्ट स्किल सीखकर इंशाल्लाह आगे बढ़कर इस महीने की बरकत को अपने पूरे साल में महसूस कर सकेंगे। इमेजिन कीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक मुसलमान अपने कुरान से क़यामत के दिन मुलाकात करेगा। इस कुरान को अपनी जिंदगी का प्रैक्टिकली हिस्सा बनाइए। आपकी और मेरी मुलाकात होगी क़यामत के दिन कुरान से। जिसका जितना कुरान से अच्छा रिश्ता होगा, उसका उतना हैंडसम कुरान उसके सामने आएगा। कुरान को फिजिकल फॉर्म में आपके और मेरे सामने लाया जाएगा। इस महीने में जितना कुरान पढ़ सकती हैं, कुरान समझ सकती हैं, कुरान को अमल में उतार सकती हैं, उतारिए। इट्स नॉट गुड टू से कि सिर्फ 30 दिन के लिए किसी नेकी को एडॉप्ट कर लीजिए जो फर्ज है और अब तक आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। मैंने शायद अपनी ओरिएंटेशन टॉक में भी ये बात की थी, असल यहां नहीं की थी, कहीं और की थी। मैं चाहूंगी तो ये कि जो अमल आप और मैं करें वो हमारी जिंदगी का आखिरी सांस तक हिस्सा रहे। बट जस्ट टू गिव एन इंसेंटिव, कोई एक ऑब्लिगेशन अपनी अपनी जिंदगी का हम सब सोचें जो फर्ज है और हम नहीं करते, कोई तो होगा। मेरा नहीं ख्याल हम में से कोई भी ये कहे कि नहीं, ऐसा तो कोई फर्ज ही नहीं जो मैं ना करती हूँ। एक होगा या कई होंगे? कई होंगे। सो मैं आपको बहुत इजी टारगेट दे रही हूँ और अल्लाह मेरी मगफिरत फरमाए, मैं गलत ना बोलूं। 30 डेज के लिए अपने आप को टारगेट दें, 30 दिन के लिए मैं अपने इस फर्ज को अपने ऊपर लेकर आती हूँ। किसकी खातिर? जिस अल्लाह की खातिर लेकर आएंगे, उस अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान में आपका दिल है। क्या पता आप 30 दिन के लिए करें और उसके बाद अल्लाह का दिल खोल दे। आज पहला दिन है, आज आप पहला रोजा इंशाल्लाह खोलेंगी इफ्तार से पहले। अभी से सोचें और घर पहुंचते तक डिसाइड कर लीजिए कि आपने अपने किस फर्ज को इन 30 दिनों में प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। और इफ्तार से पहले अल्लाह से दुआ मांगिएगा कि अल्लाह मेरा दिल खोल दे कि मैं इस अमल पर जम जाऊं और आज से ही जम जाऊं। और फिर अल्लाह से मदद मांगती रहिए। अल्लाह क्या पता एक अमल इंसान के नामाए अमाल को, अगर नेकियों के पर्डे को भारी करने के लिए काफी हो गया तो उसकी निजात हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस इब्ने माजा में आती है, यजी उल कुरान यौम अल कियामती का रजुल शहाब, तुम्हारा जो कुरान है वो लाया जाएगा एक नौजवान, खूबसूरत नौजवान की शक्ल में, और ये उस शख्स का कुरान होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके लिए कुरान कहेगा। एक स्ट्रेंजर की शक्ल में आएगा, एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में कुरान आएगा, और ये वो शख्स होगा जो कुरान के साथ दिन रात गुजारता था, जिसका फोकल पॉइंट कुरान होता था, जिसके सारे कंसर्न्स कुरान से कनेक्टेड होते थे। कुरान से वो पूछेगा, वो शख्स जब एक स्ट्रेंजर को देखेगा कि कौन है, तो कुरान जवाब देगा, आपने फरमाया अनल्लज़ी असहरतु लैलक व अअज़मु नहारक, मैं वो हूँ जिसने तुमको रात को जगा कर रखा और दिन में तुमको भूखा प्यासा रखा। अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले, कुरान को थाम कर कुरान के पैगाम पर अमल करने वाले और आगे पहुंचाने वाले इंशाल्लाह अच्छे बेहतरीन कुरान से टैंजिबल फॉर्म में कयामत के दिन मुलाकात करेंगे। कोशिश किया करें, मना नहीं है, अगेन मैं कोई फतवा नहीं दे रही, बट कोशिश किया करें जो आप पुराने जमाने में अपनी वालदा या नानी या दादी को देखती होंगी, उनका एक एक कुरान होता था, वो उसी को रूटीन से पढ़ते थे. सो वेयर एंड टेयर से स्कॉलर्स कहते हैं पता चलता है कि आपने कुरान कितना इस्तेमाल किया. अब तो हम फोन्स पर पढ़ रहे हैं या टैबलेट्स पर पढ़ रहे हैं, सो वेयर एंड टेयर का इशू तो आता ही नहीं है. जो किताब आपकी जिंदगी में सुबह शाम आपके हाथ में आ जाती है, आप उसका सफा बेंड करते हैं, आप सफा मोड़ते हैं, आप उसमें निशानी लगाते हैं. बाजू बात मुझे याद है, मुझे अपने बचपन में याद है, मेरी अम्मी के कुरान में मोर का पर रखा होता था. आई डोंट नो क्यों रखा होता था, बट हमेशा रखा होता था.